to God, glory to God.
ऐ दुआओं के सुनने वाले, हर बशर तेरे ही पास आएगा। मुझ पर तो बद अमाल गालिब आ जाते हैं, पर मेरे लिए फिदिया तो तू ही देगा। जबूर नफीस कहने लगा, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुजीदा करके अपने पास आने देता है, ताकि हम तेरी बारगाहों में तुझसे मुलाकात कर सके, तेरी बारगाहों में रहें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, ये पल उस खुदाए कादिर की ओर से हमें मिला है कि आज हम उसकी मुकद्दस हुजूरी में पाक कलाम के साथ बैठ सकें, चर्चा कर सकें और अपने लिए लाभ उठा सकें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं इस पल के लिए, और यकीन करता हूं ये लम्हात हम में से हरेक के लिए बाइस से बरकत होंगे। आज मैं चाहता हूं पाक कलाम से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की एक दुआ को आपके साथ बांटना। बाइबल में यूं तो अनेकों दुआएं हैं, आपने पढ़ा होगा, आए हमारे बाप जो आसमान में है, ये वो प्रार्थना जिसे हम कहते हैं खुदावंद की दुआ या प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, याबेस की दुआ, अनेक दुआएं हैं। पर मैं चाहता हूं आज खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उन्होंने एक दुआ करी है, इल्तिमास करी है, एक निवेदन किया, एक विनती की है, अ प्रेयर दैट दे हैव ऑफर्ड। एंड आई वांट यू टू टर्न विथ मी लूका रसूल की इंजील उसका 17वां अध्याय, लूका रसूल की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। एक खूबसूरत दुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द आज प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठ करके खुदावंद यीशु मसीह से ये दुआ मांग रहे हैं, और कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, खुदावंद यीशु मसीह के रसूल, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, खुदावंद यीशु मसीह के प्रेरित जिन्हें उसने चुना था, बड़ी भीड़ में से ढेर सारे लोग जमाने के थे उनमें से चुन करके उसने 12 लोगों को निकाला, इन्हें अपने साथ रखा। ये वो लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे खड़ा है तो यीशु मसीह के साथ खड़े थे। ये वो लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी तो इन्हें दी और कहा तुम जाके बांटना। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा था कि कैसे वो अंधे की आंख को ठीक करता है, इन्होंने देखा था कि कैसे वो बहरे के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है। आज वो रसूल, वो प्रेरित खुदावंद यीशु मसीह से एक दुआ कर रहे हैं, एक फरियाद कर रहे हैं। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा हमारा ईमान बढ़ा। रसूलों की दुआ है और कह रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। अरे तुम तो यीशु के साथ रहे हो, तुमने तो सारे मौजदे होते देखे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ हमें जरूरत है। इन्हें कुछ समझ में आया, कहने लगे जैसे वो काम करता है वैसे हम कर नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से वो कहता है वैसे हम कह नहीं पाते हैं, जिस तरह से दुष्टात्माएं उसका हुक्म मानती हैं हमारा मानती नहीं है। और आज अपने घुटनों पर आ गए हैं और ये रसूल, खुदावंद यीशु मसीह के चुनिंदा, ये 12 शागिर्द जिन्हें सारी दुनिया अपोस्टल्स के नाम से जानती है, आज खुदावंद यीशु मसीह से फरियाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। क्या खूबसूरत दुआ है। मैंने भी बहुत सी बार ऐसे ही दुआ करी, पर मेरी दुआ जरा सी फर्क होती है, हमारी दुआ थोड़ी सी फर्क होती है। हम भी कहते हैं अरे खुदावंद हमारी तनख्वाह बढ़ा, अरे खुदावंद हमारा मकान बढ़ा, अरे खुदावंद हमारे बच्चों को बढ़ा, अरे खुदावंद मेरे पास 2 पहिया है, 2 पहिये और बढ़ा दे, 4 पहिया हो जाए। हमारे पास 1 मंजिल है, उस पर 1 मंजिल और बढ़ा दे, 2 मंजिल हो जाए। मेरी 4 फिगर की सैलरी है, प्रभु 5 फिगर की हो जाए। बढ़ा की दुआ तो हम सब करते हैं, पर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं रसूलों ने यह दुआ नहीं करी अरे खुदावंद हमारी सरहद बढ़ा, रसूलों ने यह दुआ नहीं करी अरे खुदावंद हमारी ताकत बढ़ा, रसूलों ने यह दुआ नहीं करी अरे खुदावंद हमारा दर्जा बढ़ा। पर धन्यवाद करता हूं इन रसूलों ने, इन प्रेरितों ने, खुदावंद यीशु मसीह के इन शागिर्दों ने मुझे और आपको सिखाया है और करके दिखाया है। मालूम क्या दुआ, अरे खुदावंद आज हम तेरे पास आए हैं, अपने आप को तेरे सामने झुका दे रहे हैं और तुझसे फरियाद कर रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। मेरी दुआ है जब मैं और आप आज इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज जब मैं और आप इस समय खुदावन की परस्तिश कर रहे हैं, उसके कलाम के चौगिर्द बैठे हैं, तो आइए मिलकर दुआ करें और कहें, अरे खुदावन आज हम तुझसे यह नहीं मांग रहे हैं हमारा रुपया बढ़ा, हमने बहुत सी बार दुआ करी हमारा घर बढ़ा, हमारे बच्चों को बढ़ा, हमारा बिजनेस बढ़ा, हमारा मकान बढ़ा, पर अरे खुदावन आज तेरे हुजूर आए हैं और तुझसे ये दुआ कर रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, एक ऐसी दुआ जो शायद मुझे सुबह और शाम करनी चाहिए, पासवान के रूप में, सेवक के रूप में, खादिम के रूप में, अब ये दुआ नहीं खुदावन हमारे चर्च में और लोगों को बढ़ा और बाजे बढ़ा दे और गीत बढ़ा दे और एसी बढ़ा दे, पर है खुदावन तेरे हुजूर आए हैं और तुझसे इस बात की फरियाद कर रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। रसूल खुदावन यीशु मसीह के साथ उठने बैठने वाले, खुदावन यीशु मसीह के मौजों को देखने वाले, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों में प्रभु यीशु मसीह के संगी साथी, ये प्रेरित दुआ करके कह रहे हैं, अरे खुदावन हमने तेरे अद्भुत अजायब कामों को देखा है और तुझसे एक बात की फरियाद करना चाहते हैं और फरियाद ये है हमारा ईमान बढ़ा। आइए दुआ करें, जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, जब आप इबादत कर रहे हैं, इबादत करते करते कहिए खुदावन मैं भी तुझसे आज ये कहना मांगता हूँ मेरा ईमान बढ़ा। मैं दुआ तो करती हूँ पर पूरा ईमान नहीं कर पाती हूँ, मैं कलाम तो प्रचार करता हूँ पर ईमान नहीं कर पाता हूँ, बहुत सी बार मैं खुद खुदावन दूसरों पर हाथ रख के दुआ तो करता हूँ पर ईमान नहीं कर पाता हूँ, पर आज चाहता हूँ खुदावन तेरा आत्मा मुझ पर इस तरह से आए कि मैं ईमान कर सकूँ, मेरा ईमान बढ़ा। व्हाट अ प्रेयर, क्या खूबसूरत दुआ है रसूलों की, कि रसूल आके कह रहे हैं हमारा ईमान बढ़ा। पर मुझे खुशी इस बात से हुई, ना सिर्फ ये आरजू, ना सिर्फ ये इल्तजा, ना सिर्फ ये प्रार्थना इन चेलों की है, इन शागिर्दों की है। अगर आप देखें लूका रसूल उसका 22वां बाब और उसका 31वां और 32वां पद, प्रभु यीशु मसीह का उत्तर, रिस्पॉन्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु इन रसूलों से जवाब देने लगे और कहने लगे, लूका रसूल की इंजील उसका 22वां अध्याय उसका 31वां और 32वां पद, यीशु ने कहा, शमौन ऐ शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की नाई फटके। शमौन ऐ शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। पुराने जमाने में और आज भी बहुत सी जगहों पर जब हम गेहूं को झाड़ते हैं, तरीका यह होता है कि आप अनाज को या गेहूं को एक सूप में लेते हैं, सूप एक तरह की प्लेट सी होती है बांस की बनी हुई, और उसे खलियान में या बाहर आंगन में खड़े होकर के उसमें गेहूं रखकर उसे फटकते हैं, हवा में उछालते हैं। और होता क्या है, जो गेहूं का अच्छा या मजबूत या भारी दाना होता है वो तो वापस सूप में आके गिरता है, जो गंदगी होती है, जो कूड़ा होता है वो हवा में उड़ जाता है। ये तरीका था अनाज को साफ करने का। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शमौन, हे शमौन पतरस सुन देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि गेहूं की नाई फटके। फटके तो हम में से किसी को अच्छे नहीं लगते, जब फटके लगते हैं दर्द होता है, फटके लगते हैं गुस्सा आता है, जब फटके लगते हैं कभी कभी बीमारी के, कभी कभी फटके लगते हैं गरीबी के, कभी कभी फटके लगते हैं नुकसान हो गया, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, गेहूं का दाना रखा गया उछाला गया गेहूं दाना चला रहा है, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। वो कह रहा नहीं, तरीका तो यही है, फटके फटके लगे, फटके बिजनेस में लगे, फटके सेवकाई में लगे, फटके इस शरीर में, सेहत में, पैसे में, बड़ा दर्द होता है। प्रभु हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो हर सारे टीवी भी देखते हैं, टीवी में भी दुआ करते हैं। शमौन हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो बड़ी दुख की बात होती, बड़ी दर्दनाक बात होती, बड़ी दहशत की बात होती, बाइबल पढ़ते हुए डर लगता। पर मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, खुदावन ने अपनी बात को यहां खत्म नहीं किया, ये चैप्टर यहां बंद नहीं हो गया, ये कहानी यहां खत्म नहीं हो गई, पर लिखा हुआ है शमौन ऐ शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। पर आगे यीशु मसीह कहने लगा, पर मैंने तेरे लिए दुआ की है। आसमान का खुदा प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु नासरी मेरे लिए विनती कर रहा है, शफात कर रहा है, फरियाद कर रहा है और कह रहा है मैंने तेरे लिए ये दुआ की है। मालूम क्या कि तेरा ईमान जाता ना रहे। जब फटके लगते हैं, जब मुसीबत आती है, जब आर्थिक मुसीबत होती है, जब शारीरिक तकलीफ होती है, जब बीमारियां होती है हमारे पास, मालूम सबसे पहले क्या होता है, हमारा ईमान डगमगाने लगता है। हमारा बच्चा फेल हो गया, हमारा ईमान डगमगा गया। हमने तो दुआ करी थी, हमने तो रोजा भी रखा था, हम तो वहां भी हमने फोन किया था, प्रेयर टावर में हमने, प्रेयर सेंटर में भी कहा था, पता नहीं क्यों हमारा बच्चा फेल हो गया, हमारा ईमान डगमगा गया। हमने नौकरी के लिए कहा था प्रभु अगर नौकरी मिल जाएगी तो हम उसका दशमांश भी दिया करेंगे, उसने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हमने तो 2 महीने में 4 बार उपवास रखा, दुआ नहीं सुनी गई, नौकरी नहीं लगी। ईमान शमौन देख, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं की नाई। फटके, मुसीबत, कलेश, दुख, तकलीफ, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने तेरे लिए शफात की है कि तेरा ईमान जाता। अगर सिर्फ ये रसूलों की दुआ होती हमारे ईमान को बढ़ा तो शायद कमजोर होती, पर धन्यवाद करता हूं ना सिर्फ रसूल दुआ कर रहे हैं, पर धन्यवाद शुक्रगुजारी खुदावन की, उसकी बढ़ाई करने का दिल करता है आसमान का खुदा। खुदावन यीशु मसीह कह रहा है मैं भी तेरे लिए दुआ कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। पादरी साहब मत घबराइए, जो कुछ आपकी कलीसिया में हो रहा है, जो कुछ आपके चौगिर्द हो रहा है, आसमान का खुदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। विश्वास में बने रहो, ईमान में बने रहो, आसमान का खुदा तुम्हारी मदद करने को तैयार है, तुम्हारे लिए मदद स्वर्ग से पहुंच रही है। तेरा ईमान जाता ना रहे, खटकों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, थपेड़ों के बीच में, आंधियों के बीच में, तेरा ईमान जाता ना रहे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 6वां पद आपको हिफ्ज होगा, आपको रटा होगा, बगैर ईमान उसको पसंद आना नामुमकिन है। पौलुस रसूल ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से लिखा, बगैर ईमान उसे पसंद आना नामुमकिन है। हां एक बार को बगैर रोजे तुम उसे पसंद आ सकते हो, एक बार को बिना सफेद कपड़ों के तुम उसे पसंद आ सकते हो, एक बार को जब तुम खुदा के घर में आओ और शायद बाइबल अपने हाथ में लेकर ना आओ तो उसे बहुत दिक्कत ना हो, पर खुदा के घर में आओ, खुदा की हुजूरी में आओ और बगैर ईमान आ जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे घर में आना है, मेरे हुजूरी में आना है, जैसे ट्रेन में सफर करते वक्त टिकट जरूरी होता है, वैसे ही खुदा के घर में आते वक्त ईमान जरूरी है। जो लिखा हुआ है बगैर ईमान उसे पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो है, मौजूद है। हमारे और आपके बीच में आसमान का खुदा मौजूद है। आप ये कलाम शायद टीवी पे सुन रहे हैं, पर क्योंकि ये पाक कलाम है इसलिए खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे कमरे में इस पल मौजूद है, नींद की खुमारी में नहीं, पर ईमान के साथ आज खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करो। और तब लिखा है वो अपने तालिबों को बदला देता है, अजर देता है। ईमान के साथ खुदावन के घर में, ईमान के साथ खुदावन की हुजूरी में, ईमान के साथ इबादत में, बगैर ईमान उसे खुश नहीं कर सकते, बगैर ईमान हम उसे पसंद नहीं आ सकते। मेरा दुआ करना, मेरे घुटना टिकाना, मेरे हाथों उठाना अगर बगैर ईमान के है तो कहता है ये इनकम्प्लीट है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। एक बाप खुदावन यीशु मसीह के पास आया, इसका बेटा बेचारा बहुत बीमार है, समस्या यह है इसके बेटे में दुष्ट आत्मा है, बदरू है, बदरू कभी इसे आग में और कभी इसे पानी में पटकती है। बहुत इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए, झाड़फूंकी कराने वाले पास गए होंगे, सब कुछ किया होगा, पर कुछ नहीं हो पाया। एक दिन इसे मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यहां आए हुए हैं, भागकर अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर गया, शागिर्दों के पास लेकर गया। शागिर्दों ने हाथ रखे, दुआएं करी, अफसोस की बात ये बदरू, ये दुष्ट आत्मा नहीं निकली। अभी ये तमाशा चल ही रहा था, अभी हंगामा चल ही रहा था कि बाप ने देखा दूर यीशु मसीह आ रहे हैं। कलाम यू कहता है दौड़ के भाग कर गया, उसके कदमों पर अपने आप को गिरा दिया और कहने लगा मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, मेरे बेटे में बदरू है। खुदावन यीशु मसीह अब यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। मरकुस रसूल की इंजील और उसका नवा अध्याय और उसका 23वां पद इस बात की शहादत देता है, ये आदमी, ये दुखी बाप, ये परेशान बदहाल अपने बेटे को हर दिन मरते देखता है, अपने बेटे को हर दिन कभी आग में और कभी पानी में गिरते देखता और डरता रहता है पता नहीं कौन सा दिन मेरे बेटे का आखिरी दिन होगा। आज यीशु मसीह के पास आया, निराश, थका, परेशान, फटकों में, मुसीबतों में, ठुकरों में यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से आके कहने लगा, खुदावंद यीशु मसीह से, आसमान और जमीन के बनाने वाले खालिक और मालिक से कहने लगा यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह कहने लगे कर तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर इससे पहले तेरे बेटे के साथ कुछ करूं मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। मरकुस उसका नवा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत यूं कहती है, यीशु ने उससे कहा क्या अगर तू कर सकता है जो इत्तेकाद रखते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो ईमान करते हैं उसके लिए सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा इससे पहले मैं इलाज करूं, इससे पहले मैं चंगा करूं, इससे पहले मैं इसके बेटे पर हाथ रखूं, मुझे जरूरत है पहले इसको सही करूं। यदि तू कुछ कर सकता है, अगर तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है, ईमान रखने वाले के लिए, इत्तेकाद रखने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। बाप समझ गया, बाप को बात समझ में आ गई। लिखा है फिलफौर लड़के का बाप चिल्लाकर बोला मैं इत्तेकाद रखता हूं, तू मेरी बे इत्तेकादी का इलाज कर, मेरे शक का, मेरे अविश्वास का इलाज कर, मैं यकीन करता हूं आज खुदावन तुम्हारे शक का, बे इत्तेकादी का इलाज करना चाहता है। हर चीज में शक करते रहे, डरते रहे, पता नहीं, चर्च जाते तो हैं, दुआ कराई तो है, हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी भी थी, टेलीविजन भी ऑन किया है, पाक कलाम भी पढ़ते हैं, कुछ हुआ नहीं, देखो पता नहीं, ये बीमारी है। इससे पहले घर में पड़ा बेटा ठीक हो, इससे पहले बिजनेस ठीक हो, इससे पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए, इससे पहले तुम्हारी कलीसिया तरक्की करे, आसमान का खुदा तुम्हारा इलाज करना चाहता है, मेरा इलाज करना चाहता है, इससे पहले कि वो कोई बरकत दे वो बे इत्तेकादी का इलाज करना चाहता है। तब यीशु मसीह ने पहले बाप का इलाज किया, उसने कहा मेरे बे इत्तेकादी का इलाज कर, अरे खुदावंद मैं विश्वास करता हूं, अब शक नहीं कर रहा हूं, मैं ईमान ले आया हूं कि तू कर सकता है, तू ही कादरे मुतलक है। और तब कहानी आगे बड़ी खूबसूरती से है, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने बेटे पर हाथ रखा और बदरू से तुरंत छोड़कर चली गई। मुझे मालूम नहीं समस्या कितनी भयंकर है, कितने साल से है, किस किस के पास गए हो, पर आज ईमान करो, बे इत्तेकादी को घर से निकाल दो, अरे खुदावंद मेरी बे इत्तेकादी का इलाज कर, मेरी बीमारी, मेरी समस्या, मेरे दुख, मेरे आंसू, मेरा घर का कलेश मेरा अविश्वास के कारण है, पर आज मैं तेरे कलाम पर विश्वास करके इससे अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं और तुझसे आज ये फरियाद कर रहा हूं मेरा ईमान बढ़ा। एक दिन मैं सोचने लगा क्या होगा ईमान का ऑपोजिट, विश्वास का विलोम क्या होगा, आप बताइए आपको क्या लगता है, विश्वास का ऑपोजिट या विलोम क्या होगा? जी मुझे भी यह लग रहा था कि विश्वास का ऑपोजिट अविश्वास, ईमान का ईमान ना करना, इत्तेकाद बेइत्तेकाद। पर मैं कलाम से देखने लगा और मुझे समझ में आया कुछ फर्क है। मरकुस उसके चौथे अध्याय में जिक्र दिया हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक दिन नाव में जा रहे थे, आपने पढ़ा है, नाव में सफर करते करते उस झील में भयानक तूफान आ गया। यीशु मसीह आप गद्दी पे पिछले भाग में सो रहे थे, ये चेले बड़ी मेहनत करते रहे, मशक्कत करते रहे, शागिर्द किसी तरह से पार निकल जाएं, किसी तरह से पार निकल जाएं, पर कलाम यू कहता है जब खेते खेते घबरा गए तो खुदावन यीशु के पास गए और कहने लगे हे रब्बी तुझे कुछ होश है, हम नाश में जाते हैं। यीशु मसीह अपना उठे थे, अपना ऊपर आए और लिखा है आंधी को डांटा और लहरों से कहा थम जा, और लिखा तुरंत चैन हो गया। यह पहली डांट थी। अब इसके बाद दूसरी डांट चेलों को पड़ी, चेलों की तरफ मुड़े और उनसे कहने लगे तुम क्यों डरते हो। और अगला सवाल यह था तुम्हारा ईमान कहां गया। ईमान का ना होना डर का सबब बनता है। जब ईमान होगा तो डर नहीं होगा, और जब डर होगा तो ईमान नहीं होगा। हम बहुत सी बार जिंदगी में परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, डरते रहते हैं और कहते हैं हां हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं तो ईमान रखता हूं, मैं तो बिलीवर हूं। जी नहीं, बिलीवर साहब, पादरी साहब, अंकल जी, भैया, मुझे मालूम है आप कितने बरस से मसीही हैं, पर आपको विश्वासी बनना है, आपको बिलीवर बनना है, विश्वास करना है खुदावन यीशु मसीह पर। अगले अध्याय में, पांचवें अध्याय में फिर यही जिक्र दिया हुआ है आराधनालय के सरदार की बेटी के बारे में। आराधनालय के सरदार यीशु मसीह के पास आया पांचवें अध्याय में मरकुस के, और कहने लगा मेरे घर चल दुआ कर दे। अभी वो कही रहा था, उसके घर से लोग आए, कहने लगे अब रब्बी को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। दामन यीशु मसीह ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मालूम उससे क्या कहा, उस आराधनालय के सरदार से, यायर की बेटी से कहा मत डर, केवल इत्काद कर, ईमान रख। बार 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 हम देखते हैं ईमान और डर एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। अगर ईमान है तो डर नहीं होगा, अगर ईमान है तो शेरों के मान में जाने को तैयार होगा, अगर ईमान है तो आग के भट्टे में जाने को तैयार होगा, अगर ईमान है तो लाल समुंदर पार करते हुए डर नहीं लगेगा, अगर ईमान है तो यर्दन पर भी चलते हुए डर नहीं लगेगा, अगर ईमान है तो लहरें शांत हो जाएंगी, अगर ईमान नहीं तो थोड़ा सा फोड़ा, जरा सा डर, जरा सी खट भी हमें डरा देती है। पता नहीं क्या होने वाला है, अरे बड़ी मुसीबत है, अरे बड़ी मुश्किल है, अब मालूम नहीं क्या होगा। आज जब मैं और आप खुदावन की हुजूरी में हैं, उससे कहें है खुदावन मैं तेरे हुजूर आया हूं और चाहता हूं, रसूलों के साथ मिलकर यह दुआ करना चाहता हूं, हमारा ईमान बढ़ा, हमारा ईमान बढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रसूल की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 28वां और 29वां पद। यूहन्ना रसूल यूं लिखने लगे 6 अध्याय में 28वें और 29वें पद में, यहां कुछ अच्छे लोग हैं जो खुदा का काम करना चाहते हैं, और लिखा हुआ है बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दें। कुछ लोग हैं जिनके अंदर इच्छा है खुदा का काम करने की, आपके दिल में तमन्ना होगी, आपने सोचा गरीबों को खाना खिला दें, इन बच्चों को पढ़ा दें, चर्च में घड़ी दे दें, पादरी साहब को एक सूट दे दें, खुदा काम होगा। ये सब काम अच्छे हैं, पर आपको मालूम जो परिभाषा खुदावन यीशु मसीह ने बताई वो क्या थी। उसने कहा यदि तुम खुदा का काम करना चाहते हो तो जिसे उसने भेजा है, जिसे आसमान के खुदा ने भेजा है, उस पर ईमान रखो। यही खुदा का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड दैट वी नीड टू बिलीव द वन ही हैज सेंट फ्रॉम हेवन। उद्धारकर्ता यीशु नासरी तुम्हारे और मेरे लिए पाप के सागर में आ गया, इस गुनाह अलुदा दुनिया में आ गया ताकि मैं उस पर विश्वास करके फिर गुनाह में ना मरूं पर उससे निकल आऊं। आज आपके लिए मौका है, आपने कभी विश्वास नहीं किया, आपने कभी नहीं सुना, आज शायद आप पहली बार ही उस उद्धारकर्ता के बारे में सुन रहे हैं, इस दया के सागर के बारे में सुन रहे हैं, इस क्षमा की खानी के बारे में सुन रहे हैं। आज विश्वास करो और तुम्हारे लिए इस संसार के दुखों का अंत होगा। वो तुम्हें पानी पर चलना सिखाएगा, वो तुम्हें आग को बुझाना सिखाएगा, वो तुम्हारी आंख से सब आंसुओं को पोंछ देगा। ये नंबर स्क्रीन पर है, आप इसे डायल कर सकते हैं। प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार बैठे हैं। आप किसी भी बात आसमान के खुदा तक पहुंचाएंगे ताकि वो आपका ईमान बढ़ा सके। अब शक नहीं, अब डर नहीं, पर हम ईमान के साथ उस खुदा की परस्तिश करेंगे, ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावन की ओर ताकते रहें। खुदावन आपको बरकत दे।
Glory to God, glory to God.